ये आकाशवाणी है, अब आप वैष्णवी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल घाना की राजधानी अक्रा पहुंचे। हवाई अड्डे पर घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा ने उनकी अगवानी की। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा के साथ अक्रा में जुबली हाउस में द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत और प्रगाढ़ करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा की। वार्ता के बाद सांस्कृतिक आदान प्रदान और पारंपरिक संगीत के क्षेत्रों सहित 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने वार्ता के बाद अपने संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि उन्होंने भारत घाना साझेदारी को एक व्यापक साझेदारी का रूप देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि भारत घाना के राष्ट्र निर्माण की यात्रा में सिर्फ भागीदार ही नहीं बल्कि सहयात्री भी है।
आज राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया। घाना के राष्ट्र निर्माण की यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार 3 बिलियन डॉलर पार कर चुका है। आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया।
राष्ट्रपति महामा ने श्री मोदी के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री को घाना का सर्वोच्च राजकीय सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा गया। इस यात्रा का उद्देश्य घाना के साथ भारत की दीर्घकालिक मित्रता की पुष्टि करना तथा वैश्विक दक्षिण के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूत करना है। घाना में भारत के उच्चायुक्त मनीष गुप्ता ने आकाशवाणी के साथ एक विशेष बातचीत में भारत घाना साझेदारी की बढ़ती शक्ति और बहुक्षेत्रीय गहराई का जिक्र करते हुए इसे पश्चिम अफ्रीका में सबसे गतिशील द्विपक्षीय संबंध बताया। उन्होंने कहा कि आर्थिक, व्यापार और निवेश सहयोग दोनों देशों के बीच जुड़ाव के प्रमुख स्तंभ हैं।
Economic trade and investment, these are one of the key pillars of our partnership with Ghana. Ghana's economy is now on the rebound. Since late last year, the economy has grown consistently by 4-5% on quarter-on-quarter basis. So that implies once the country gets out of the economic restructuring, you will have a slew of foreign investments and that offers a new opportunities also to the Indian companies to invest over here.
क्वाड संगठन के सदस्य देशों ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों, षड्यंत्रकर्ताओं और धन उपलब्ध कराने वालों को तुरंत दंडित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से सहयोग करने का आह्वान किया है। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के संयुक्त बयान में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को संसद की कोई बैठक नहीं होगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध के बाद के गाजा में हमास नहीं रहेगा। अपने भाषण में नेतन्याहू ने ऐसी किसी भी परिदृश्य को अस्वीकार कर दिया जिसमें हमास युद्ध के बाद के गाजा में भूमिका निभाए, क्योंकि काहिरा में अमेरिका समर्थित युद्ध विराम प्रस्ताव पर नई वार्ता होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमास को पराजित, हथियार विहीन और निर्वासित किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने सीनियर पुरुष राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच मनोलो मार्कस के अनुबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। AFC महिला एशियाई कप 2026 क्वालिफायर में भारत ने कल शाम थाईलैंड के चियांग माई स्टेडियम की 700वीं वर्षगांठ पर इराक पर 5-0 से शानदार जीत दर्ज की। इसके साथ ही महिला टीम एशियाई कप क्वालिफिकेशन से बस एक कदम दूर रह गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।